ہم یہاں اکثر و بیشتر دعا کے سلسلے میں ذکر کرتے رہتے ہیں اور متعدد بار اس پہ بھی بات ہوئی کہ دعا کو ہم لوگوں نے ایک غلط رنگ دے دیا ہے. انسان کی فطری سہل پسندی بہت زیادہ شاید غالب آ گئی. ہندو معاشرے میں ہمارا تمام وقت گزرا, میں سے ایک بڑی اکثریت ہندوؤں سے مسلمان ہوئی ہے اور ہم اب بھی ہندو کلچر کا کچھ حصہ کیری کیے ہوئے ہیں, تو شاید اس وجہ سے بھی ہمارا زور بجائے جد و جہد اور محنت کے وظائف اور دعا پر ہے. اب تو ہم خالصتاً ہندوانہ طریقے سے, میں شوز پہننا چاہتا ہوں, آپ ذرا دعا کر کے بتا دیجئے میں شوز پہن لوں, مجھے کامیابی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اب یہاں تک نوبت آئی ہوئی ہے. یہ مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے. مسلمان تو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عملی اقدامات کے لیے تیار ہوتا ہے, محنت کرتا ہے, پھر رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے اندر جو کچھ تو نے جسمانی اور ذہنی قوتیں عطا فرمائی تھیں, جو علم اور عقل عطا فرمائی تھی, میں نے اس سے بہترین کام لیا اور اپنی کسی کوشش کر لی ہے, تو اسے قبول فرما اور تو مجھے میری اس محنت کا وہ پھل عطا فرما دے جو میرے بہترین مفاد میں ہے. یہ رویہ ہے مسلمان کا. دعا کا معاملہ اس سے ذرا سا مختلف ہے, وظائف سے ذرا مختلف ہے. دعا مانگنا انسانی جبلت میں ہے, ہیومن انسٹنکٹس میں سے ہے. جب ابھی مذاہب بالکل اپنی ابتدائی شکل میں تھے, جیسے ایک موقع پر یہاں گفتگو کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاعدہ یہ رہا ہے کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. تو اسی طرح جو مذاہب اتارے گئے رب تعالیٰ کی طرف سے, اس زمانے میں جو اور جیسی انسان کی ذہنی سطح تھی, اس کے مطابق ہی پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے زمین پر تشریف لانے کے بعد انسان ارتقاء کے جن جن مراحل سے گزرا ہے, انسان ارتقاء کے جس سٹیج پر تھا اس دور میں اتنا ہی پیغام اللہ تعالیٰ نے انسان تک پہنچایا مذہب سے متعلق. تو بالکل ابتدائی شکلیں بھی رہی ہیں. اس دور میں بھی جب ابھی اللہ کا پیغام بالکل ابتدائی شکل میں آیا تھا, تو انسان اس وقت بھی کسی ایسی سپریم طاقت کی تلاش میں رہتا تھا جس کے سامنے وہ مصیبت کی گھڑی میں گڑ گڑائے اور مدد کی دعا کرے. یہ انسانی جبلت ہے, ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ جب وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جسے وہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور جانے. شروع میں اسی جبلت کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی جن کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. اس کی گلیئرنگ ایگزامپل ہندوازم ہے. ہندوازم کبھی اپنی اصل شکل میں دنیا میں رہا ہوگا, کیونکہ یہ اس وقت دنیا کا سب سے قدیم لیونگ ریلیجن ہے. اس کی عمر کا اندازہ 5,000 سے 7,000 سال, ہندو خود اسے 5,000 سال کہتے ہیں, لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ اس سے ذرا زیادہ پرانا ہے. تو آج سے 5,000 سال پہلے تو तो इंसान ज़हनी तौर पर इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, उसके वसाइल भी नहीं थे, रफ्ता रफ्ता वसाइल भी नहीं थे, रफ्ता रफ्ता हिंदुइज्म में भी तहरीफ होने लगी। और चूंकि इंसान उन दिनों तरक्की याफ्ता नहीं था, इसलिए आसमानी आफात और बहुत से जंगली जानवर उनसे अपना दिफा नहीं कर पाता था, तो दिफा न कर पाने की वजह से इंसान ने उन तमाम चीजों को अपने से ज्यादा ताकतवर जान लिया और उनकी पूजा शुरू कर दी कि हमारे इस तरह से हाथ जोड़कर सामने बैठने से ये खुश रहेंगे और हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हिंदुइज्म में फिर कुछ ऐसा भी मामला हुआ कि जिन चीजों से फायदा मिलता था इंसान को, इजहार तशक्कुर के तौर पर इंसान ने उसकी पूजा शुरू कर दी। हिंदुइज्म में सांप देवता है, उसकी वजूहात, लेकिन हकीकत यह है कि उसके जहर से खौफ खा के उसकी पूजा की जाने लगी थी। ये इंसान की फितरत का हिस्सा कि जिसे वो अपने से ताकतवर समझता है, जिसे तस्खीर नहीं कर सकता, उसके सामने झुक जाता है। यही इंस्टिंक्ट उससे दुआ कराती है। हिंदुओं ने अपने बहुत से देवता घर लिए, कोई दौलत की देवी, कोई ताकत का देवता, कोई कहर का देवता, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें वो अपने से ताकतवर समझते हैं। रब ताला ने मजहब के जरिए इसी इंस्टिंक्ट को चैनलाइज किया कि बार बार वो अपने पैगंबर इंसानों के पास भेजता रहा और उन्हें बताता रहा कि ये सब जिनसे तुम डरते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, ये मेरी तखलीक है, इनका खालिक मैं हूं और मैं सबसे ताकतवर हूं। आखिरी पैगाम जब रब ताला ने भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, उस वक्त तक चूंकि इंसानी जहन का इर्तका मुकम्मल हो चुका था, तो वो पैगाम भी मुकम्मल कर दिया अल्लाह ने। मुकम्मल करने के बाद ये ऐलान कर दिया कि अब मजीद न कोई मजहब उतारा जाएगा, न कोई पैगंबर आएगा। अल्लाह ने अपने आखिरी पैगाम में भी इसी चीज पे जोर दिया कि मालिक कुल मैं हूं, अल्टीमेट ताकत मैं हूं, मैंने ही तुम्हें तख्लीक किया, चांद सूरज आग सब मैंने बनाई है, जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो, मैं दूंगा। यहां भी मुसलमान जब दुआ मांगता है तो अल्लाह को सुप्रीम समझ के ही उससे दुआ मांगता है, उससे मदद का तलबगार होता। फर्क यह है कि मुसलमान की डायरेक्शन सेट हो गई कि जो कुछ मांगना है रब से मांगना है, ये रब ही है जो हमें अता करता है। तो ये इंसान की इंस्टिंक्ट है दुआ की, इससे वो प्रोटेक्शन महसूस करता है। जैसा रब ताला ने कुरान में भी कहा कि इंसान बहुत बेसब्रा है, इंसान को सब्र करने के लिए भी सहारे की जरूरत है, एक आस की जरूरत है। आम हालात में सब्र करेगा नहीं, मायूस हो जाएगा, लेकिन दुआ इसे पुरुमीद रखती है और उसी उम्मीद के सहारे वो इंतजार कर लेता है। हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, हमारा कोई बड़ा काम अटका होता है, हम अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं कि या बारी ताला हमारा ये काम कर दे, उसके बाद दिल में यकीन होता है कि हमने रब ताला के हजूर अर्ज की है और रब का ये वादा है कि वो दुआएं सुनता है, दुआएं कबूल करता है, तो वो हमारी दुआ उसने सुन ली है और हमारे ही काम हो जाएगा। ये जो एहसास है कि हमारा काम हो जाएगा, ये हमें सबर पर आमादा करता है, हमारे सबर को बरकरार रखता है। हम हर रोज 5 वक्त अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते हैं, और वो लोग जिन्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि नफली इबादत भी करें, वो इससे भी ज्यादा मर्तबा दुआ मांगते हैं, और हर रोज इस उम्मीद पे सोते हैं कि कल हमारा काम हो जाएगा। तो यूं हम सबर करते रहते हैं ता वक्ते के हमारा वो काम अपने वक्त मुकर्रा पर रब की तरफ से हो जाए। अगर इंसान की फितरत में कहीं ये जिबिल्लत ना होती तो खुदकशी की और एक दूसरे को मारने लड़ाई झगड़ों की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज हो जाती। तो ये एहसास कि एक सुप्रीम ताकत है जो हमें लुक आफ्टर करती है, जो हमारी जरूरतें पूरी करती है, हमारी हाजात पूरी करती है, जो हर मुश्किल में हमारे काम आती है, ये सुप्रीम ताकत, सिर्फ यही एक एहसास, सिर्फ यही एक एहसास हमें पूरी उम्मीद रखता है। अब एक कुफ्र है, अब ये आयत अब समझ आएगी कि अगर हम दुआ मांगते हैं रब के हजूर और उसके बावजूद हम मायूस होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पर ईमान और भरोसा हमारा खत्म हो गया है। जब तक ये ईमान और भरोसा हमारा कायम है रब ताला पर, इंसान रब से मायूस नहीं होगा। किसी भी दुआ के पूरे होने के लिए रब पर ईमान और भरोसा बड़ा पुख्ता होना जरूरी है। जितना ज्यादा ईमान और भरोसा हमारा पुख्ता होगा रब ताला पर, हमारी दुआएं उतनी ही जल्दी और उतनी ही ज्यादा कबूल होंगी, क्योंकि जब हमारा ईमान और भरोसा रब ताला पर बहुत मजबूत है तो हम रब ताला से एक मान के साथ मांगते हैं। वो मान ये है कि मेरा रब बहुत ताकतवर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, मेरे रब के खजाने बेपाया हैं, वो जो चाहे कर गुजरे उसे कोई पूछने वाला नहीं है, किसी काम के लिए उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ती, वो सिर्फ कुन कहता है और काम हो जाता है, किसी भी काम के वकू पजीर होने के लिए उसका एक हल्का सा इशारा काफी है। तो जब मेरा रब इतना ताकतवर है और इस दर्जे का कादिर है और मैं उसका बंदा हूं, वो यकीनन मुझे लुक आफ्टर करेगा, तो इन सब चीजों के बाद शक रह ही नहीं सकता दिल में कि मेरा रब मुझे लुक आफ्टर नहीं करेगा, मेरा रब मुझे इस मुश्किल से निकालेगा नहीं। तो जब ये एहसास मजबूत होता है दिल में तो रब से जब वो दुआ मांगता है तो उस दुआ के अंदर ये एतमाद होता है जिसे मैं मान के रहा हूं कि मेरी दुआ यकीनन कबूल होगी, क्योंकि मैं उस हस्ती के सामने हाथ उठाए हुए हूं जो मुझे लुक आफ्टर करता है। तो जिस दिन से मैं पैदा हुआ अब तक वो मुझे लुक आफ्टर करता रहा है, जो रब मुझे अब तक लुक आफ्टर करता रहा आइंदा भी लुक आफ्टर करेगा। तो फिर इंसान के मांगने के लबो लहजे में वो एक मान पैदा होता है और यही मान रब को बहुत पसंद है कि इंसान का ये मान हो कि मैं रब का बंदा हूं और मेरा रब ऐसा है जो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, तो दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। अगर इस सिलसिले में कोई सवाल कोई साफ करना चाहते हो तो फरमा दें। इस सिलसिले में शायद मेरे ख्यालात आपको पसंद ना आए, मेरा इंतहाई पुख्ता यकीन है और अकीदा है कि मेरा रब हर एक की सुनता है। वो उन लोगों की भी सुनता है जो बहुत नेक हैं, बड़े अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, बरगजीदा बंदे हैं अल्लाह के। वो मुझ जैसे गुनाहगारों की भी सुनता है, उनकी भी सुनता है जो अल्लाह के खिलाफ माजल्ला बेपनाह शिकायतें और गिले शिकवे लिए फिरते हैं। वो उनकी भी सुनता है जो शिर्क करते हैं, उनकी भी सुनता है जो मानते ही नहीं। तो रब ताला को किसी बंदे का वास्ता क्या दिया जाए जो इतना मेहरबान है कि वो हर बंदे की सुन लेता है, वो जानवरों को भी सुनता है, तो फिर क्यों ना उससे बराह रास्त मुखातिब हुआ जाए। मैं तो ये समझता हूं। और अगर ज्यादा ही कहना चाहें आप, तो फिर उसको सलीके से बयान कीजिए बात को, वो इस तरह से कि उसे वास्ता दीजिए उसके रहीम और करीम होने का, उसके कादर मुतलिक होने का, फिर उसे उससे कहिए कि तो अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और अपने नेक बंदों के सदके मुझ पे अपना रहम फरमा दे, मुझ पे करम फरमा दे। मेरे अकीदे के मुताबिक तो ये बेहतर है। देखिए, जब हम दुआ किसी मखसूस चीज के लिए मांगते हैं, जैसे मैं एक मिसाल दे दूं कि कोई मुलाजिम पेशा आदमी अल्लाह के हजूर दुआ करता है कि या बारी ताला मेरी ट्रांसफर लाहौर कर दे। अब इंसान का इल्म तो महदूद है, उसकी अकल भी महदूद है, उसको ये नहीं मालूम कि उसके लिए लाहौर की ट्रांसफर कैसी रहेगी। हो सकता है कि उसका क्वेटा ट्रांसफर होना ज्यादा बेहतर हो। हम अल्लाह के हजूर ये दुआ करें कि या अल्लाह हमें लाहौर ट्रांसफर कर दे, तो मालूम यह हुआ कि लाहौर ट्रांसफर हुई और हम मुश्किलात का शिकार हो गए। ऐसे बहुत से मसाले मेरे सामने हैं। या हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरी तरक्की कर दे। ये रबी है जिसे कल का हाल मालूम है। इल्मे गैब सिर्फ रबी के पास है। तो अगर इस दुआ को हम यूं कर लें कि या बारी ताला मेरी अकल के मुताबिक तुम लाहौर मेरे लिए बेहतर है, लेकिन तू बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या बेहतर, तो वो कर दे जो मेरे हक में बेहतरीन है। या अगर हम तरक्की की दुआ कर रहे हैं तो तरक्की से मुराद हमारी यही होती है कि हम पर रिस्क वसी हो जाए, तो हम रब ताला से ये दुआ करें कि या बारी ताला मुझ पर रिस्क वसी कर दे। तो अब ये अल्लाह की सवाबदीद है कि वो हमें रिस्क कहां से अता करना चाहता है, किस जरिए से अता करना चाहता है। तो इस तरह से जो फैसले आएंगे ऐसी दुआ के बाद, वो यकीनन हमारे हक में बेहतर होंगे। तो हम अपने ऑप्शंस को महदूद न करें एक पर्टिकुलर चीज के कह के। इसी तरह मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उन्हें किसी काम को मुकम्मल करने के लिए रुपए पैसे की जरूरत है, तो वो ये दुआ करते हैं, या अल्लाह ये मेरा मकान बिक जाए ताकि इससे चार पैसे आ जाएं और मेरा ये काम हो जाए। हम अपने रब को मुआज़ल्ला गरीब क्यों समझते हैं कि उसने एक मकान हमें दे दिया, अब वह आइंदा नहीं दे पाएगा? ऐसा नहीं है, हमारे रब के खजाने बेपाया हैं, बेहद हिसाब हैं। अगर वह हमें एक मकान देने पर कादिर है तो इस पर भी कादिर है कि हमारा वो दूसरा काम करने के लिए रुपया पैसा मजीद हमें अता कर दे। तो हम ये दुआ क्यों ना करें कि या बारी ताला मेरा ये काम, मेरी ये जिम्मेदारी मेरे सर आन पड़ी है, इसके लिए वसाइल नहीं है तो मेहरबानी कर वसाइल पैदा कर दे। तो रब ताला वसाइल अता फरमा देता है। तो बाज़कात हम खुद दुआ ऐसी मांगते हैं कि हमारी ऑप्शंस महदूद हो जाती हैं। तो दुआ मांगते वक्त रब ताला से अपनी ऑप्शंस को महदूद नहीं करना चाहिए। हम ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मैंने फलां जगह फलां डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दी है, मुझे वहां नौकरी दे दे। हमें नहीं मालूम कि वहां की नौकरी हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। हम ये दुआ क्यों ना करें कि या बारी ताला मुझ पर रोजगार के दरवाजे खोल दे और मुझे ऐसा रोजगार अता फरमा दे जिसमें मेरे लिए सहूलत भी हो और इज्जत भी हो। रब ताला जहां चाहे हमें रोजगार दे दे, अब वो बेहतरीन होगा। तो अपने ऑप्शंस को महदूद ना कीजिए कभी। दुआ के लिए सजदा अलहदा किया जाना चाहिए और उस सजदे में हाथ आसमान की तरफ फेस करें, जमीन की तरफ फेस न करें। नमाज के अंदर किए गए तमाम सजदे दुनियावी अगराज से पाक होते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि ख्वाब नफली नमाज हो या फर्ज नमाज, उस पर जो हम नियत करते हैं उसमें एक जुमला खास तौर पर कहते हैं कि नमाज बराए अल्लाह ताला की। जुबान से न भी अदा हूं तो नियत यही होती कि मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूं। तो जो अल्लाह के लिए नमाज हम पढ़ रहे हैं उसके सजदे में कोई और बात की ही नहीं जा सकती, ये तो लॉजिकल चीज है। अब इसका एक और मसला आ जाएगा जो नमाज से ताल्लुक रखता है कि नमाज के दौरान जो कुछ हम पढ़ते हैं उसके अंदर गैर अल्लाह का कलाम नहीं होना चाहिए। कोई अगर ऊंची आवाज में हमसे जुबान के जरिए उफ भी अदा हो गया तो नमाज दोबारा अदा करना होगी, चाहे जाए कि हम उसमें दुनियावी दुआएं मांगने लगे सजदे में गिरे हुए। सजदे में क्या पढ़ना है, रकू में क्या पढ़ना है, कयाम में क्या पढ़ना है, ये सब चीजें मुकर्रर हैं, उनसे हम बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए दुआ के लिए जो सजदा किया जाए वो सलाम फेरने के बाद फिर सजदे में गिर के अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाया जाए। अब यहां थोड़ा सा एक सवाल पैदा हो जाएगा, क्या रब ताला नियतों से मुतासिर होता है या हमारे जाहरी तौर तरीकों से? मेरा दिल और मेरा दिमाग तो कहीं और हैं और मैं सजदे में गिरा हुआ रटे रटाए अल्फाज बोले जा रहा हूं, ये दुआ कबूल होगी? या ऐसा इंसान जो खाना खा रहा है बैठा हुआ और उसका दिमाग और दिल यकसू है रब की तरफ और पूरी यकसुई से वो रब के हजूर दिल में गिड़गड़ा रहा है, दुआ कौन सी कबूल होगी? एक शख्स है जो गाना सुन रहा है बैठा, मौसीकी की आवाज ने या गाने के किसी बोल ने उसके दिल या दिमाग को झंझोड़ दिया, और वो खौफ खुदा से कांप उठा, पूरी यकसुई से रब की तरफ मुतवज्जो होकर उससे दुआ कर रहा है। तो वो दुआ कबूल होगी, या मेरी तरह जैसे मैं एक नुमाइशी काम किया करता हूं, सजदे पे सजदा किए जा रहा हूं। रब के साथ तो जनून के मामलात हैं, दिल के मामलात हैं, वहां जुबान और जाहिरी तौर तरीके उसका कोई दखल है नहीं। वहां तो वो शख्स बाजी ले गया जो इश्क में डूबकर उसके साथ मुखातिब हुआ, बदनिस्बत उस जाहिद के जो बहुत रखरखाव के साथ नमाज तो अदा कर रहा है लेकिन दिल और दिमाग उसके कहीं और हैं। अल्लाह को तो वही कमा खाते हैं जो उसके इश्क में मजनू होती हैं। बात यह है कि वो जो एक जुमला आपने कहा कि उस जुबान से दुआ करवा जिसने गुनाह न किया हो, उस जुमले को जरा सा आप तब्दील कर लीजिए यूं कि उस जुबान से दुआ कर जिससे गुनाह न किया हो। करवा और कर का फर्क है। बात यह है कि हम जिंदगी में अगर फर्ज कर लीजिए किसी शख्स की टोटल जिंदगी 70 साल है, तो इन 70 सालों में कितना अरसा मुश्किलात का शिकार रहते हैं, मुख्तलिफ पैचेज में मुश्किलात आती हैं। अगर हम उन पैचेस को, उस लेंथ ऑफ टाइम को इकट्ठा कर लें, वी पुट देम टुगेदर, वो टोटल टाइम कितना बनता है हमारी जिंदगी का टोटल हिस्सा, बमुश्किल 10 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे। अब क्या ये इंसाफ के खिलाफ नहीं कि मैंने 70 साल की जिंदगी में 55 साल तो आराम के गुजारे और 15 साल मेरी मुश्किल के हैं? तो जब मैं वो 55 साल आराम से गुजार रहा था, तो क्या मैं ये कभी कहने गया था रब ताला से कि या बारी ताला क्या कर रहा है इतना आराम मुझे दे रहा है, दिखता नहीं मैं इतने आराम में हूं? तो वो 55 साल तो मैं कभी नहीं कहने गया रब से। तो अगर ये मुख्तलिफ पैचेज में, छोटे छोटे पैचेज में, शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए मेरे ऊपर मुसीबतें आई भी, कभी 1 साल के लिए मुश्किल आ गई, कभी 1.5 साल के लिए आ गई, कभी 6 महीने के लिए आ गई, तो मैं रब के हजूर फौरन कहने लगू कि या अल्लाह ये तू क्या करता है, कैसा रब है, मैं तो ये मुश्किल में आ गया। मैंने शायद पहले भी बयान किया था कि रूहानी मामलात के सिलसिले में जिन साहब के पास जाके मैं बैठता था, जिन्हें उर्फे आम में हम मुर्शद कहते हैं, तो गर्मियों के दिन थे, मुर्शद साहब का हुजरा 5.5 फुट by 3.5 फुट का था, खिड़की उसमें कोई थी नहीं, ना कोई वेंटिलेटर था और एयर कंडीशनर का सवाल ही नहीं, कोई हब्स बेपना। मैं वहां जाके बैठा, ऑफिस से उठ के गया था, तो वो मगरबी तालीम का असर तो बहरहाल कायम रहता है, तो बेख्याली में मेरी जुबान से मुलाकात के इब्तदाई लम्हों में जो गुफ्तगू की जाती है वो मौसम के बारे में होती, मैं ये भूल गया कि मैं मुर्शिद साहब की खिदमत में हाजिर हूं, तो वो जबान से निकला कि हजूर आज गर्मी बहुत है, तो जूते पड़ गए वहां सबकी मौजूदगी में बेपनाह किस्म के, कि तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम अपने आका के किसी काम पर उंगली उठाओ, ये आका की मर्जी है कि वो गर्मी भेजे या सर्दी भेजे, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि गर्मी बहुत है, ये अल्लाह का शिकवा बयान करना कहां से सीखा तुमने? तो ये तो मुझे मालूम नहीं उस बात समझ में आई या नहीं आई, लेकिन वो जूते इतने शदीद थे लोगों की मौजूदगी में कि मेरी जुबान से एक ही जुमला निकला कि आई एम सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। वो मालूम नहीं उनके रूहानी तसर्रुफात का असर था या क्या था, वाकई उस दिन के बाद से फिर जुबान पर आई ही नहीं ये बात कि आज गर्मी ज्यादा है आज सर्दी ज्यादा है। बात यह है कि वो तो मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा रब भी है, पालने वाला है वो, तो उसका शिकवा हम कैसे बयान कर सकते हैं? हमें हक ही नहीं कि शिकवा करें रब का। और ये कहना कि मैं मुश्किल में हूं, मैं फलां आफत में हूं, ये उसका शिकवा बयान करना है। इंसान को सजावार ही नहीं कि कभी ये जुबान पर लाए, ये ज्यादा बेहतर है कि आदमी मुश्किल में हो तो रब से कहे कि या बारी ताला, तो बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, और ये मेरा ईमान है कि तू मुझ पर उससे ज्यादा मुसीबत नहीं भेजेगा जिसकी मुझ में सख्त ना हो। जो कुछ मैं तुझे जानता हूं वो ये है कि तू रहीम और करीम है, मेहरबान है, तेरी रहमतों और तेरी मेहरबानियों से मुझे ये कतन तवक्को नहीं कि तू मुझे मुश्किल में रखेगा, ठगार बंदा ही क्यों ना हो, तो तू अपनी रहमत नाजल फरमा दे और मुझसे इन मुश्किलात को दूर कर दे। लीजिए दुआ हो गई। तो रब ताला अपनी रहमत के सदके मुश्किलात दूर कर देता है।